और उद्देश्य वो है जो स्वतः सिद्ध नित्य है, और कामना वह है जो उत्पन्न और नष्ट होती है उस पदार्थ में वो कामना होती है। और स्वयं ये नित्य है तो कामना के कारण से भटकता फिरेगा, कामना का त्याग करके और नित्य तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य निहाल हो जाएगा। उद्देश्य और कामना दो चीज है। उद्देश्य नहीं है, कामना ही कामना, कोरी कोरी कामना है,
कामना है।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे कहना मानता ही है, हमारे पूछते ही नहीं। शिवाय कामना क्या है महाराज, काले जो व्याख्यान देने को ले गया तो वहां कहा गया कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पहले तो दूसरा ही उद्देश्य बताया, आजकल उद्देश्य दूसरा ही बताते हैं, लुटिया ही डूब गई, खत्म हो गया। उद्देश्य भी कोई बदलता है, असली उद्देश्य है ही नहीं, कामना ही कामना बदलती रहेगी। बहुत साधारणता से बुद्धि व्यवसाय, बहुत साधारणता से बुद्धि व्यवसाय, बड़ी सफल होगी, बढ़िया सफल होगी और उन्नति हो जाएगी, लोगों को कला मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। दुख तो अनाचार से है, अन्याय से है दुख। जब अपना काम ठीक करेगा, अन्याय नहीं करेगा, दुख कैसे रहेगा। अब तो अन्याय करो न्याय करो किसी तरह से ही। राज की आदमियों में भी ऐसी हमने सुनी है शाखा पार्लियामेंट की बात, उसमें प्रस्ताव आया कि ये धनी आदमियों का धन नष्ट कैसे हो, ये धनियों का धन कैसे लिया जाए, इनका नष्ट कैसे हो। तो कहा तो सच्ची ये बात नहीं, ऐसी बात उठी, मैंने सुनी परंपरा पक्का, मेरे को पता नहीं ऐसी बात उठी। तो बीकानेर दरबार ने कहा कि आपको निर्धन कैसे बने, तो आप यही सोच रहे सब धनी कैसे बने, सब धनी बने ये नहीं सोचते निर्धन कैसे बने। अब ये 5 वर्षीय योजना ठीक है, ये निर्धन कैसे बने, अब इसके पीछे पड़े हैं धनी निर्धन कैसे बने, अरे निर्धन धनी कैसे बने इसके पीछे पड़ो। भाव तो शुद्ध बना लो, ना तो आप निर्धन बना सकते ना धनी बना सकते, अपना अंतगण गिरा लो। तू गिराओ क्यों बाबा, शुद्ध बनाओ, सबको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। अब टैक्स पर टैक्स बढ़ा ले हैं, और ये लोग है जो चोरी पर चोरी कर रहे हैं, और वकील है चोरी पर चोरी सिखा रहे हैं, और उन्नति हो जाएगी कैसे, उन्नति हो जाएगी। तो पाठशाला यही बनी है, बेईमानी कैसे हो।
आध्यात्मिक विद्या का भाव है गवर्नमेंट,
बिल्कुल सफा जयराम जी। साधु समाज यही करे, मकान बनाएंगे, खूब मेहनत बनाएंगे, ऊंचे रुपया कमाएंगे, चेला चेली बनाएंगे, हम भी आराम करेंगे, तुम आराम करो, हम नहीं करें। क्या बात करोगे बेचारे, बैठ रहे तुम छेड़ो रख कचरे में तुम रख दो। मैं खूब पूछो आप, मैं कहूँगा तो मेरी बुद्धि के अनुसार, अध्ययन के अनुसार, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं मानने का आग्रह नहीं करता, मेरा मान लो आप, क्योंकि आपकी बात मैं मानने को तैयार नहीं, तो मेरी बात क्यों मानूं जबरदस्ती। परंतु पूछोगे तो कहूँगा मेरी निश्चय की विदेशी बात, जो संतों से सुना है, पुस्तकों से पढ़ा है, और भूल हो जाती मेरी हो जाती है, मूल में चीज बढ़िया है, हमारी भूल को आप छोड़ दो, सिद्धांत की बात पकड़ो, आपके हमारे सबके लिए आनंद, बड़ा भारी आनंद हो सकता है, बड़ी भारी शांति हो सकती है। धर्म और नीति है, नीति स्त्री है, धर्म है पति, धर्म के बिना नीति विधवा है, और धर्म नीति नहीं है तो धर्म विधुर है, दोनों चलना चाहिए, धर्म सहित नीति होनी चाहिए, नीति सहित धर्म होना चाहिए, तो व्यवहार बहुत बढ़िया चलेगा।
नीति
अदरम हो जाए क्या क्या कपूत हो गया बेटा बेटी आ गया विधवा तो है बापड़ी विधवा तो है छोरा हो गया कपूत क्या क्या हो गया इधर से होगी जी और क्या हो गया पता नहीं पता है जी नीति भी नहीं नीति व नीति ब्राह्मणों के ऊपर हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया मुस्लिम पर टैक्स नहीं है नीति है मुसलमान कितना भी ब्याह करो हिंदू तो ब्याह नहीं कर सकते तो नीति है क्या नीति है कोई धर्म जयराम जी की वोट की प्रधानता है वोट है ज्यादा संख्या होते मूर्ख मूर्खों की प्रधानता क्या है क्या नहीं भगवान जाने भी हमारे देश बची हुई है अच्छा उसकी मर्जी है ना आजाद उनकी मर्जी है मुक्ति हो जाएगी सही थी क्यों पुरुष में जावे फ्री वेश्यास्ता शूद्रास्ते भी अंति परांगति हमारी गीता कहती क्यों फोड़ देखे ना ना गायत्री मंत्र नहीं नहीं गायत्री नहीं अरे गायत्री से ऊंचा राम नाम हो जाएगा गायत्री में क्यों फंसो राम राम करो सीधा कोई विधि नहीं विधान नहीं सीधा अशुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में कल्याण करो सीधा रास्ता बढ़िया अब सीधा नहीं और एक बात क्या है मनुष्य कल्याण नहीं चाहता अभिमान चाहता है अभिमान गायत्री हम जपेंगे जिन्हू हम ले लेंगे तो अभिमान और बढ़ा लो भैया क्या फायदा होगा अभिमान का तो पता नहीं होता अभिमान बढ़ाना चाहते हैं कल्याण नहीं चाहते कल्याण चाहते अभिमान को दूर करो है वो निकालो है वो निकालो बस नया क्यों आपत करो एक ही फल बिल्कुल जिसमें प्रेम ज्यादा होगा तो तेज हो जाएगा सा ओम वासो राम राम भगवान का प्रेम श्रद्धा ज्यादा हो जाएगी वो हो जाएगा महाराज भीतर से श्रद्धा हो जाएगी तो नहीं रटा तो का भया घटाना चाहिए हेत जैसे नर सुहागुनी प्रियो को नाम न ले तो क्या हो गया भीतर का भाव होगा भावग्राही जनार्दन निहाल हो जाएगा बड़ी सीधी बात बड़ी सरल अटपटी है ही नहीं बिल्कुल अटपटी नहीं खटपट नहीं चटपट काम बने ऐसी बात नारायण 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 सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय नारायण नारायण नारायण
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 जून 1982 को प्रातः 8:30 बजे स्वर्गाश्रम में गीता भवन नंबर 3 के बगीचे में दिया गया। राम राम राम।
श्रीमन नारायण नारायण। अर्जुन ने संन्यास और त्याग का अलग अलग तत्व जानना चाहा। उसने त्याग और संन्यास दोनों वर्णन किया और दोनों में उपासना साथ में मिला देना इसका भी वर्णन किया। 40 तक कर्मयोग और सांख्ययोग का वर्णन और 39 से 48 तक इसने उपासना सम्मिलित कर दी और 49 से 55 तक सांख्य योग में ध्यान को सम्मिलित कर दिया। ऐसे इनका ठीक तरह से वर्णन करके अब जो भगवान के मन की बात है वो कह रहे हैं। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने मन की बात भी कह देते और भगवत भक्ति की बात कहते। भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय है भगवत भक्ति और उसमें भी शरणागति है। इस वास्ते अब भगवान कहते हैं सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाशयः मद प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पदमद्ययम्। ये जो सांख्ययोग और कर्मयोग है इन दोनों से वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती है। इस वास्ते कहा है यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। जो सांख्ययोगियों के द्वारा स्थिति प्राप्त की जाती है वही कर्मयोगियों के द्वारा एक मत सम्यक चाहे सांख्ययोग में चाहे कर्मयोग में किसी रीति से अच्छी तरह स्थित हो जाए उभी और विंदते फल दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो ये दो निष्ठा मनुष्यों के लिए भगवान ने बताया। तो दो निष्ठाओं से प्राप्त होता परमात्म तत्व प्राप्त होता है ऐसे ही भगवत कृपा से उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो भगवत कृपा की तरफ देखने वाला वो योग निष्ठा सांख्य निष्ठा का आश्रय नहीं लेता वो भगवान का ही आश्रय लेता है इस वास्ते वो भगवान निष्ठ होता। अब ध्यान दे दोस्तों, ने अभी जो भगवान ने बताया सांख योग का विवेचन किया, उसमें ध्यान योग परो नित्यम नित्य निरंतर विदग्ध सेवी लघुवासी एकांत में रहे, भोजन भी थोड़ा करे, संयम से केवल ध्यान योग के परायण करे, सब छोड़ छुड़ा कर एकांत रह कर योग प्राप्त करे, ये विधि बताई। अब भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माण्य फिर सदा पूर्वाण मत किसी योग का शांत का किसी बल का आश्रय नहीं करे, सब कुछ बन आश्रय केवल मत बपास है भगवान के चरणों का आश्रय। वो आश्रय लेकर के सर्व कर्माण भी सदा कुर्वाण, ये दो पद विलक्षण दिए कर्मों के साथ में तो सब शब्द लगा दिया, कुर्वाण के साथ में सदा शब्द लगा दिया। मानो शास्त्र गीत जो जो भगत पर कर्तव्य प्राप्त हो जाए वे सबके सब काम करें, सब छोड़ गए काम करने की बात नहीं, सब काम अपना कर्तव्य आ जाए धर्म से नीति से शास्त्र से कर्तव्य रूप से, ऐसे सबके सब खाना पीना आदि का लेना देना आदि व्यवहार का खाना शरीर आदि का सब काम करे और करे सदा फिर रोजाना हर हमेशा वैसे ही करता रहे कुर्बानी के साथ सदा रहे। आश्रय क्यों मेरा है उन कर्मों का आश्रय नहीं, साधन का आश्रय नहीं, साधन का भरोसा नहीं, एक आश्रय एक बल एक आश्रय विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास पति है करे एक निष्ठ मत प्रसाद आदब आपने होती शाश्वत पद्म उसको अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण हो जाती है कि मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाती बिल्कुल मुफ्त में केवल भगवान की कृपा से, उसने आश्रय केवल भगवान का ले लिया बस। ये दूसरे का आश्रय है ये बाधक है, धन का आश्रय जन का आश्रय विद्या बुद्धि कुल भरण आश्रम योग्यता विद्या आदि की जो आश्रय रहना है ये असली बाधक है। आश्रय केवल भगवान सब काम करना है पर भरोसा आशा विश्वास आश्रय केवल भगवान, उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये अति का सर्व कर्माण्य भी सदा गुरु अति कहता है सब काम को करता हुआ भी, तो करता हुआ उस परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हाँ कभी युक्ति संगत बात नहीं बैठती, ध्यान योग पर एकांत रहे करे तो उसको प्राप्ति हो जाए ठीक है सब छोड़ कर लग गया, ये कैसे हो जाएगा। भगवान कहते हैं कैसे की बात नहीं मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाए, बोलो कौन है पूछने वाला, मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाए बस। उनका कोई बल बुद्धि विद्या योग्यता साधन नहीं, हो जाता है मेरी कृपा से कानून बता। अब अर्जुन कहते हैं चेत सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत, तू चित्त से सब कर्म मेरे समर्पण कर दे और तू मेरे परायण को जा। तो चित्त से अर्पण करना क्या, मेरा कोई काम है ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है और मेरा कुछ है ही नहीं, केवल मेरे भगवान है और भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा रूप से करना है, तो सब कर्म मेरे में समर्पण कर दे। मन से अपना भार अपने पर मत रख, ये भगवान का काम है। कैसी बढ़िया बात है, चेत सा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य और मत्वर तू भी मेरे परायण हो जा, सब काम भगवान कर मैं भी भगवान का। बुद्धि योग में पास रखती है तेरे तो बुद्धि योग का आश्रय लेना है, समता सिद्धि असिद्धि में कार्य की निष्पत्ति अनिष्पत्ति में कार्य पूर्णता में अपूर्णता में संसार का आदर हो निरादर हो निंदा हो प्रशंसा हो सही रोगी हो निरोगी हो इनमें समता का अपने समस्त भगवान की तरफ दृष्टि है, ये अवस्था बदलती रहती है। क्या राजी क्या नाराजी बुद्धि उपास्य मत चित्त संभव निरंतर चित्त मेरे में रहे भगवान का भगवान मेरे में। ऐसे एक प्राणियों से कैसे उद्धार होगा? मत चित्त सर्वदुर्गा मत प्रसादा तरीशत मेरे में चित्त लगाने से मेरी कृपा से सब विघ्नों को तर जाएगा। ध्यान देना दो बात आई है, प्राप्ति भी मत प्रसादात लिखा है, परमात्मा की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से होगा, और जितने विघ्न बाधाएं आती है जिसमें परमात्मा की चरण करने में उन विघ्न बाधाओं को भी सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरीके से मेरी कृपा से तर जाएगा। तो विघ्नों की निवृत्ति के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, सब में भगवान की कृपा काम करेगी, अपने भगवान के चरणों के कृपा भगवान की आप साफ काम करेंगे। ऐसे भगवान ने बहुत राजी होकर बात कह दी खुल कर, तुम तो बस ऐसे हो जाएम भगवान निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जाए। मेरे में चित्त वाले का मतलब कि भगवान का हूं, जैसे पतिव्रता स्त्री पति की हो बस ये हो जाता है, ना भाई बंधु की ना माँ बाप की हो ना कुटुंबियों की हो और तो क्या बेटे पोतों की भी नहीं हुआ, धन संपत्ति देवो घर की भी मैं नहीं, मैं तो केवल पति की हूँ। ये मच्छित स्वतंत्र हो सब काम करती है, परंतु पतिव्रत एक धनी एक पति वो मच्छित होने से सब विघ्नों को तर जाएगा, अभिलाषा का जो गुण हो जाएगा। ऐसे भगवान ने खुल करके अपने हृदय की बात की, कहने पर भी अर्जुन बोला नहीं। तो तुम अहंकारा न श्रोषि विनिंग, तुम अहंकार के कारण से मेरी बात नहीं सुनाएगा तो नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा। भगवान और तू जो कहता है यद अहंकार माश्रित मैं यो स्थिति बनने से अहंकार का आश्रय ले कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनी स्थिति बताकर और नौ दिन कह दिया युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं योग से इति कह दिया। अब भगवान कहते हैं ये जो मैं योग से कहता है और उधर कहता है कि स्वाभिमान त्वाम प्रपन्नम मैं आपके शरण हूं, तो मेरे शरण है तो युद्ध नहीं करूंगा, ये कहां से बात आई? ये मेरा शरण नहीं है अहंकार आश्रय, ये अपने अभिमान का आश्रय है, ये मेरा शरण नहीं है। यदि अहंकार आश्रित्य मैं युद्ध से इति मन्य से ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्य से व्यवसाय ये सब व्यवसाय मिथ्या, ये जो तेरा निश्चय है झूठा है असत्य, ये चलेगा नहीं। क्यों महाराज? प्रकृति स्वयं योग से तेरी प्रकृति छात्र प्रकृति है तेरी, वो युद्ध में लगा देगी। अपनी प्रकृति से सब बाध्य है, प्रकृति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, इसे प्रकृति स्वयं योग से स्वभाव जीन कौन थे निबद्ध स्वेन कर्मणा, एक तो स्वभाव से पैदा हुआ, एक स्वकर्म है क्षत्रिय के लिए काम है, तो स्वभाव जन्य अपने कर्मों से बंधा हुआ, कर्तुम निश्चित करना तो नहीं चाहता वो भी तो अवश्य करेगा करना पड़ेगा। महाराज क्यों करना पड़ेगा? प्रकृति स्वामी प्रकृति लगा देगी, उन कर्मों से तू बंधा हुआ है, प्रकृति जड़ है वो कैसे लगा देगी? प्रकृति नाम स्वभाव कैसे लगा देगा? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, वो यंत्रारूढ़, जैसे यंत्रारूढ़ यंत्र में आरूढ़ हो गए, यंत्र को चलाने वाला होता है, तो फिर वो यंत्रारूढ़ जो यंत्र जैसे चलता चलना ही पड़ता है, ऐसे सब अपने शरीर इंद्रिया अंतःकरण के भीतर में आरूढ़ है और ये यंत्र है, उनमें जैसे जैसे पहले कर्मों के संस्कार हैं उन कर्मों के अनुसार वो परमात्मा चलाएंगे। जैसे एक ही बिजली से अनेक तरह के यंत्र चलते हैं, ऐसे भगवान की शक्ति से संपूर्ण प्राणियों के काम होते हैं। यंत्रारूढ़ आप हो जाओ और फिर कहो हम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। वो ईश्वर उसे प्रेरणा करता है, उस प्रकृति के अनुसार से वो करना पड़ता है, परवश और करना पड़ता है। तो महाराज इसे छूटने का कोई उपाय उपाय सीधा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। संपूर्ण भाव से, अनन्य भाव से उस परमात्मा के ही शरण चला जा, उसकी कृपा से विघ्न बाधा तर जाएगी और तू शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। किससे? तत्प्रसादात, उस परमात्मा की कृपा से। ये भगवान ने कहा, जैसे मत प्रसादात कहा, यहाँ तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राय शाश्वतम इति ज्ञान आख्यातम दुनिया। ये गोपनीय से गोपनीय बढ़िया ज्ञान मैंने तेरे को कह दिया, अब एतद विमर्श इसका विचार कर लेना। जितना मैंने उपदेश सुनाया है उन सब का विचार करके और फिर तेरी जैसे मर्जी हो जैसे कर जा, यथेष्ट जो चाहे जो कर, ऐसे भगवान चुप हो गए। अब इस पर विचार करें, इस प्रकरण पर थोड़ा सा सोचें। भगवान के आश्रित होने से सब काम भगवान को करना पड़ता है, उसकी वो निष्ठा भी उसकी नहीं, वो भगवान निष्ठ हो गया, केवल भगवान के आश्रित हो गया, भगवान के भरोसे हो गया, अपनी चिंता बिल्कुल छोड़ दी, भीतर से चेतना सर्वकर्मानी चित्त से भगवान को, आप भी भगवान का हो गया। अब जो शास्त्र की रीति के अनुसार व्यवहार में प्रवाह के अनुसार जो कर्तव्य आ जाए उसको करो, केवल भगवान की राजी के लिए। ये खास भगवान का उपदेश, इस उपदेश की बात अर्जुन ने सुन करके कहा नहीं कुछ नहीं, तो भगवान ने कहा उस ईश्वर के शरण जा जो सबके हृदय विराजमान है अंतर्यामी। फिर नहीं बोला तो कह दिया कि मर्जी आवे जैसे कर। ये जो मर्जी आवे जैसे कर को कहना है, ये एक तरह का त्याग है, धमकाना है। खूब अर्जुन कहता है कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके मैं शरण हूं, शिक्षा दीजिए। और भगवान कहते हैं यथेष्ट मर्जी आवे जैसे कर। क्यों कहते? ये कहना तो वही चाहिए था, पर तो वहां नहीं गए, यहाँ कहते हैं। इस कारण क्या है? तो भगवान में मुस्कराए, हंसे तो जरूर, तुम वासुदेव जी के ऐसा प्रहसन निवार तो हंस कर बोले, तो बचपन कर रहा है, शरण होकर कहता युद्ध नहीं करूंगा, शरण तो हो जाता है, आपके आप मेरे को शिक्षा दीजिए, युद्ध करूंगा नहीं मैं शिक्षा क्या दू, तेने निर्णय मेरे बोलने से पहले ही कर लिया। अब यहां तक आते आते मत्सित सत्सम भव कह दिया, इतने पर भी अर्जुन नहीं बोला तो कहते हैं देख, ये जो तू नहीं करना चाहता ये तो तेरे को परवश और करना पड़ेगा, और उसमें प्रेरणा उस अंतरिया में ईश्वर की है व्यापक की, तो उसी के शरण चला जा, उसकी कृपा से सब हो जाएगा, अब जा तेरी मर जाओ। तो मर्जी आवे जैसे करना ये फटकार है, धमकाना है, त्याग करना, और त्याग करना चाहते नहीं है भगवान। जैसे बालक गेंद को फेंकता है जोर से, वो भीत के लगती है पीछे आ जाती तो पकड़ लेता है, तो जोर से फेंकता है पीछे आने के लिए, अगर उधर निकल जाए तो फिर जाकर के वहां से खोजेगा लाएगा। वो फेंकने के लिए नहीं फेंकता, वो आने के लिए फेंकता। ऐसे भगवान कभी ऐसे सोचा करू अपनी तरफ खींचने के लिए फेंक दे, तो अब वो त्याग के लिए नहीं, ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। भगवान ने कहा ये गुह्य से गुह्यतर ज्ञान कह दिया। गुह्य तो है कर्मयोग, रहस्य तुम बहुत से लोग जानते नहीं, कर्मों को करते हैं पर कर्मों के करना का जो कर्म योग है उस रहस्य को नहीं जानते। वो गुह्य है, छिपा हुआ है, सब काम करते हैं सदा, परंतु काम सदा ही संसार मात्र के लिए हो, अपने लिए किंचित मात्र भी न किया जाए, सबका सब संसार के लिए ही किया जाए, तब अपना संबंध परमात्मा के साथ होता है, वो योग होता है। कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए, ये बात छिपी नहीं, अपने लिए काम करते हैं। तत्व ज्ञान के लिए श्रवण मनन निध्यासन भी अपने लिए करते हैं, ध्यान और समाधि भी अपने लिए करते हैं, कर्मयोग अपने लिए नहीं होता। केवल संसार के हित के लिए ध्यान लगाओ, समाधि करो, मदद करो, निध्यासन करो, चिंतन करो, सब संसार के हित के लिए, ये होता है रहस्य, कर्मयोग का रहस्य। ये गुह्य है, गोपनीय है, पता नहीं लोगों को। और गुह्य से गुह्यतर क्या है, दुनिया मात्र की सेवा करना, ये हुआ गुह्य। और तमेव शरणंगत से उस परमात्मा के शरण चले जाओ, ये हुआ गुह्यतर। तो गुह्यते गुह्यतर मैंने कह दिया, इसका विचार कर लेना। फिर भगवान ने कृपा की कि ऐसे ही छोड़कर न चल दे कहीं, अशेषण विमरीश, मैंने जितना उपदेश दिया है सबका विचार कर लेना, क्या क्या कहा है, वो विचार करके फिर तेरी मर्जी आओ। जैसे मानो ये विचार करेगा तो होश आ जाएगा, ये भगवान का विश्वास है। मैंने कहने में कमी नहीं रखी, अभी कह दे तो सब कुछ मेरा अर्पण कर, तू भी मेरे अर्पित हो जा। इस बार तेरी मर्जी आओ जैसे कर। अब ये अवस्था हुई अर्जुन की, तो अर्जुन को अब चेत हुआ कि भगवान के लिए मैं तो कहता हूँ आप शिक्षा दीजिए वैसा करूं, और भगवान कहते तेरी मर्जी आवे जैसे कर।